Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad, Prathama Adhyaya, Sambandha Bhashya, ka vichar chal raha hai. Kya vichar hua tha? हाँ उपनिषद है शब्द है तो ये तो उपनिषद शब्द से याचिक्या सित ग्रंथ प्रतिपाद्य वस्तु तो जो व्याख्या करने की इच्छा से ये ग्रंथ शुरू किया और इस ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य वस्तु यानी प्रतिपाद्य विषय ही विद्या ही कहा जाता है. प्रतिपाद्य विषय के रूप में विद्या को ही कहा जाता है. तादर्थ्यात उसके प्रयोजन से अर्थात जिसकी जिसका ज्ञान ही प्रयोजन है उस प्रयोजन से ये ग्रंथ को भी ग्रंथों भी उपनिषद यानी उपनिषद शब्द से कहा गया. ठीक यहां तो हो गया था ना. ये मुमुक्षवः जो मुमुक्षु हैं ये भी मैंने चर्चा किया था. जो मुमुक्षु हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णाः यानी दृष्ट विषय और जो अनुश्रविक विषय है उन विषयों से जो विरक्त हुआ. ठीक है जो मुमुक्षु यदि मुमुक्षु है तो फिर ये दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय से तो विरक्त होगा. नहीं तो किसी लिए मुमुक्षु है. मोक्ष की इच्छा किसी लिए है. हाँ अब ये दृष्ट विषय जो है दृष्ट विषय में जैसे तरह तरह काल मैंने बता रहा था दृष्ट विषय में विरक्त कैसे होगा. यदि दृष्ट विषय में यदि ये नहीं होगा दोष दर्शन नहीं होगा तो विरक्त कैसे होगा. हाँ तो दृष्ट विषय में दो दोष है. हाँ एकांत अत्यंततः अभावात ये कल बता रहा था. यदि ये दृष्ट विषय यदि यदि एकांत और आत्यंतिक यानी पूर्ण रूप से अवश्य उसका अभाव नहीं होगा. ठीक है और या एक बार अभाव होने के बाद फिर जो उत्पन्न हो जाना. ठीक तो इसका अभाव जो है होना चाहिए दृष्ट विषय में. कल उठा रहा था ना दुख त्रय अभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु दृष्टि सा अपार्था चेत न एकांत अत्यंत तो अभावात कि तीन दुख सभी को सता रहा है. अब ये तीन दुख का कैसे नाश होगा. दुख त्रय तीन दुख क्या क्या है बोलिए. आध्यात्मिक तीन दुख हैं. ये तीन दुख के संबंध से सभी परेशान हैं. अब इसका कैसे नाश होगा. जिज्ञासा तद अपघातक हेतु उसके हेतु की जिज्ञासा होती है कैसे नाश होगा. उसका कारण क्या है. जिज्ञासा होती है. अब इस जिज्ञासा उपाय यदि दृष्ट उपाय जैसे बुखार हुआ तो फिर आप दवाई करें और दवाई से वो नाश हो जाएगा. हाँ धन की जिज्ञासा है मेहनत करो धन प्राप्त करो. स्त्री कामना की जिज्ञासा है विवाह कर लो. तो इन सभी उपाय से ये निरस्त हो जाएगा. ऐसे यदि कहोगे तो ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है. क्योंकि ये जो है ये जो भी उपाय से आप नाश करोगे ये अवश्य नाश नहीं होता है. और एक बार नाश होने के बाद फिर उत्पन्न नहीं होना चाहिए ऐसा भी नहीं होता है. उत्पन्न भी हो जाता है. इसलिए दृष्टि उपाय से इसको आप नाश नहीं कर सकते हैं. इस जिज्ञासा को मिटा नहीं सकते हो. ठीक है जिज्ञासा एक बार मिट जाने के बाद फिर उत्पन्न नहीं होना चाहिए. हाँ अच्छा फिर जो है आगे कहा कि अनुश्रविक अनुश्रूयते इति अनुश्रव. देखो इसका ये व्युत्पत्ति है अनुश्रूयते इति अनुश्रव. तो अनुसर्ग कौन है? ना वेद है, शास्त्र है, उसका अनुसर्ग कहते हैं। हाँ, सुना जाता है। तो ये वेद शास्त्र है और अनुसर्ग भी क्या है? तो वेद वेद शास्त्र में जो प्रतिपादित वस्तु है, जो विषय है, उसका अनुसर्ग कहते हैं। नहीं समझे? तो अनुसर्ग क्या क्या हो जाएंगे? हाँ, यागादि कर्म जो भी उसमें बताया वेद शास्त्र में, ये सब अनुसर्ग हो जाएंगे। ठीक है? हाँ, यानी वेद में रहने वाले जो कर्म है वो अनुसर्ग है। वेद को अनुसर्ग कहा गया और वेद में बता जाने वाले जो भी बताया गया, प्रतिपादन किया गया, तो वो सब अनुसर्ग है। अर्थात क्या लेना है? हाँ, कर्म कांड से लेना है, यागादि कर्म लेना है, तो अनुसर्ग में ये यागादि कर्म हो जाएंगे। ठीक। अब ये जो यागादि जो वैदिक कर्म का विषय, उस विषय से भी वितृष्णा विरक्त हो, जो मुमुक्षु विरक्त हो, यदि उससे यदि विरक्त नहीं है तो फिर आप उस ब्रह्म विद्या में कैसे निष्ठ होगा? तो उसमें भी विरक्त हो। हाँ? अच्छा, ये जो अनुसर्ग, जैसे मैंने कहा कि ये विषय में बताया दृष्ट विषय में, ऐसे अनुसर्गिक में भी तीन दोष आ जाते हैं। अनुसर्गिक में क्या क्या? अविशुद्धि क्षय अतिशय। हाँ? नहीं, एक श्लोक है, दृष्टवद अनुसर्गिक स ही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात। ये सांख्य शास्त्र में एक श्लोक आया है कि ये जो है ये अनुसर्गिक कर्म में तीन दोष आ जाते हैं। एक अविशुद्धि दोष है, एक क्षय दोष है और एक अतिशय दोष है। क्षय क्षय दोष है, अविशुद्धि दोष है और अतिशय दोष है। अविशुद्धि दोष ये जो वैदिक कर्म है जिसको अनुसर्गिक कहा, ये जो यागादि वैदिक कर्म है, ये अविशुद्धि कैसे है? यानी शुद्ध नहीं क्यों है? क्योंकि जैसे शास्त्र में आया पशु हिंसा से या करे, अभिचरण आपका आया, हाँ, पशु की हिंसा करके यानी पशु को मार करके कोई किसी के संतप्त से, त्रास से, आवेश में आकर यदि कोई राजा कोई किसी को मारने के लिए चाहता है कि बार बार वो परेशान करता है, उसको मार देना है, तब जाकर मेरा राज्य जो सुरक्षा होगी। तो आवेश में आकर, क्रोध के आवेश में आकर के यदि वो कोई पशु की हिंसा करके या कर्म करता है, तो ऐसे भी वेद में प्रतिपादन हुआ है। तो ऐसे ये जो कर्म जो है ये हिंसा से भी युक्त है, इसलिए अविशुद्धि दोष इसमें आ जाता है। ठीक है? अच्छा, तो इसलिए आप जब तक इसको यदि नहीं समझेंगे, इसमें दोष का दर्शन नहीं होगा, तो आप त्यागेंगे नहीं। कोई सामने दूध बढ़िया से एक गिलास दूध लाकर रख दिया पीने के लिए, आप पियेंगे क्यों नहीं है? यदि नहीं पी रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ, चाहे कोई जहर कुछ डाला होगा, कोई बीज डाला होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, इसीलिए हमको नहीं पीना। देखते देखते यहां रहेगा, फेंकेंगे नहीं, लेकिन आप पी नहीं सकते हैं। ऐसे वस्तु की उपलब्धि आपके पास में चारों तरफ होने के बावजूद भी आप उसको उपयोग नहीं करेंगे, भोग नहीं करेंगे, यदि आप उसमें दोष यदि देखेंगे। ऐसे ये दोष आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो यहां जो शास्त्रीय जो दोष बताया जा रहा है, ये दोष दिखाई नहीं जा रहा है। अच्छा, दिखाई नहीं पड़ रहा है ये। तो ये कहा अविशुद्धि दोष है। क्षय दोष क्या है? क्षीण पुण्य मर्त्यम लोकम। हाँ, अब यदि आप ये प्राप्त करेंगे, हाँ, चाहे कितने भी आपका पुण्य कर्म होगा प्राप्त करेंगे, लेकिन पुण्य यदि जब क्षीण हो जाएगा, फिर मर्त्यलोक को फिर आप प्रविष्ट करेंगे, मर्त्यलोक को प्राप्त होंगे, ये क्षय दोष है। ठीक है? अच्छा, और तीसरा दोष क्या है? अतिशय दोष है। अब देखो, कोई विद्वान कर्मकांडी करता है तो फिर जो है जो मंद कर्मकांडी उसे देखते देखते जलता है, अतिशयता। इस सारे कर्म में ये जो है अतिशयता है और क्षीणता है, और जो है ये अविशुद्धता है। ये तीनों दोष से युक्त होने कारण सांख्य शास्त्र में कहा कि उसके विपरीत जो साधन है वो साधन ही ना उसमें कोई दोष है। कौन सा साधन है? कहा कि ज्ञ यानी परमात्मा, प्रकृति, जीव, इन तीनों विषयों में जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो फिर आपको ये प्राप्त मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, यानी ये जो तीन दुख का नाश नहीं होगा, ये सांख्य शास्त्र में ये प्रतिपादन है। व्यक्त अव्यक्त ज्ञान, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, हाँ, ज्ञान से ये यानी पुरुष को सांख्य शास्त्र में पुरुष बताया। तो ये तीनों का ज्ञान से ही आपका ये जो 25 तत्वों का ज्ञान से, और ये जो यहाँ इस श्लोक में जो ज्ञान और जो है ये प्रकृति और जो ये जो बताया, हाँ, तो आपको सिद्धि जब आपको समझना है तो 25 तत्वों के ज्ञान से ही तीन दुख का निवृत्ति है सांख्य शास्त्र में। अच्छा, इसी प्रकार करके जो इसमें जब जो विरक्त हो जाएगा और फिर और उपनिषद शब्दित विद्या, यानी उपनिषद शब्द से यानी उपनिषद शब्द से बतलाने वाली जो विद्या है उस विद्या में तन्निष्ठ होकर, हाँ, यदि आप तो विद्या सुन रहे हैं लेकिन तन्निष्ठता कहाँ है? विद्या तो सुन रहे हैं, तत्परता तन्निष्ठता उसमें आनी चाहिए। और तन्निष्ठता नहीं आ रही क्यों है? क्योंकि आलस्य प्रमाद है। ये सबसे बड़ा साधकों में ये सबसे बड़ा दोष रहता है, आलस्य और प्रमाद है। आप बोलेंगे कि भाई हम तो वेरी एक्टिव है, हम तो एक्टिव, हाँ, आलस्य एक अलग है और प्रमाद एक अलग है। आलस्य प्रमाद एक ही नहीं है क्या? नहीं, आलस्य प्रमाद एक ही मत बोलिएगा, आलस्य अलग चीज है। तो एक लापरवाही प्रमाद है और लेजीनेस ये जो है आलस्य है, ठीक है। तो ये जो आलस्य जो है, एक तो आलस्य तो होता रहता है, आलस्य होता रहता है, लेकिन आप लोग जैसे ज्यादा आलस्य भी नहीं करेंगे, एक्टिव हैं, लेकिन प्रमाद होगा, ये बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा आज करेंगे, कल करेंगे, हाँ, इतने तो बहुत हो गया, थोड़ा सा देखेंगे, हाँ नहीं, नहीं मिलता जुलता नहीं है, लग रहा है ऐसा, हाँ ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आलस्य अलग चीज है, आलस्य लेजीनेस है, और प्रमाद जो है लापरवाही है। अब लेजीनेस को कैसे लापरवाही बोल दोगे आप? हाँ, लेजीनेस लेजीनेस है, हाँ, वो जो है वो तमोगुण है, और लापरवाही तो वो तो तमोगुण भी है और रजोगुण भी है, उसमें अज्ञानता है, झलकता है। और इस विषय में योग दर्शन में बहुत बढ़िया चर्चा है, कभी करेंगे तो आगे उठाएंगे कभी, हाँ। इसलिए जो है, हाँ, प्रमाद तो मृत्यु रूप है, हाँ, आलस्य प्रमाद जिन साधक में आ जाते हैं तो फिर वो तो मृत्यु रूप ही है, वो साधक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं कभी कोई चीज उठा देता हूँ, मेरा विषय है, आप ऐसा नहीं है। ये एक बार क्या हुआ कि दिन में इतनी नींद आई, अब कुछ खाने पीने में कुछ होगा, क्षेत्र का तो भोजन खाना पड़ता था, ऐसा नींद आई। अब जैसे खा करके मैंने अपने कुटिया में गुरुजी खिला कर अपने कुटिया में आ जाता था, और वो कुटिया ठीक एक पेड़ के नीचे था, और गर्मी का दिन है, पेड़ के नीचे थोड़ा ठंडा लगता था। अरे भाई, क्या नींद आती थी, कितना मैंने कंट्रोल किया, कितने भी नहीं सोने के लिए प्रयास किया, हुआ ही नहीं। तो फिर क्या किया कि वो बगीचा, छोटा सा बगीचा था, उस बगीचा में जितना शारीरिक परिश्रम काम, वो दिन दोपहर में 2 बजे रखा मैंने, फावड़ा रखा, गमला रखा, मिट्टी इधर मिट्टी का खुदाई कर उधर डाला, इधर पूरा पसीना पसीना होकर के फिर कुटिया में आकर बैठता था। जैसे 15 मिनट होता था, धीरे धीरे बॉडी जब कूल होता था, फिर समझी पास जाकर कहता था कि क्या करूं, नींद आ रही। तो पहले बहुत कंट्रोल किया, अपने आप में कंट्रोल किया, लेकिन हुआ नहीं। आखिर में मैंने क्या बताऊं, ये तो बड़ी ये बात है, आखिर में जाकर के 2-3 बार मैंने सुसाइड करने के लिए प्रयास किया। एक बार ऐसा हुआ, ये नींद के लिए भी, मैं कहा काल से यदि मैं सोऊंगा ना तो फिर मर जाऊंगा, मैंने पूरे गंगा जी में कूद पड़ूंगा। और ऐसा है, गंगा जी यहां से लेकर के वहां तक करीब जो है 100 मीटर तक रहती है, उस गर्म रेती में चलते चलते पानी लाता था। अब रेती में चलना कितना मुश्किल है, रेती में पानी लाकर चलना कितना, गर्म रेती में और जूता नहीं पहन के,
फिर पानी लाता था, फिर लेकर आते, कुछ ना कुछ काम करता था, फिर भी आकर इधर कुटिया में आता था, फिर नींद आ जाती थी। आखिर में मरने के लिए डिसाइड किया, फिर जैसे मरने के लिए डिसाइड किया ना, एक मन को चोट लगा तो 7 दिन तक नींद नहीं आई, फिर धीरे धीरे फिर नींद आई। फिर स्वामी जी को कहा कि मैं आपके पास आकर के यहां रहूंगा, थोड़ी सी ऐसे ऐसे हो रहा है, सुबह नींद नहीं खुल रही है, दिन में नींद आ रही है, तो ऐसा ठीक है। फिर गुरु जी के चरण में जाकर सोया, फिर वो थोड़ी सी उठाते थे, उठ जाता था, फिर करता था, ऐसे होते होते फिर कंट्रोल किया। ये जो है आप जो है, आप जो जितनी आप समझ रहे हैं, आप जितनी स्मार्ट समझ रहे हैं, जितनी एक्टिव समझ रहे हैं, ये सब पूरा पानी में चला जाएगा, सब पानी में चला जाएगा। चोरी नहीं करते होंगे, ज्यादा नहीं खाते होंगे, आप कैसे चोरी करेंगे, कैसे खाएंगे, ये सारे आपके जीवन में आ जाएगा एक एक करके। अब वो स्थिति, वो देश काल आवे हैं, आप उसको वेलकम ही नहीं कर पाएंगे। आप अब वेलकम करोगे, जब उसको क्रिएट करोगे और फिर उसमें झेलोगे कैसा होता है, तो फिर समझ में आएगा। एक एक घटना है जो झेला हूं, उस चीज को आपके सामने रखता हूं। बड़े बड़े संत महात्मा तो क्या क्या करते हैं, हम तो ज्यादा मैं पढ़ता नहीं हूं ज्यादा किसी जीवन के विषय में, इसलिए मैं ज्यादा उदाहरण दे नहीं पाता हूं। तो फिर क्या हुआ कि आलस्य प्रमाद, उसमें तन्निष्ठ होने के लिए आलस्य प्रमाद रहित होना चाहिए। और आपका योग दर्शन में भी तो एक सूत्र आया, तीव्र संवेगानाम आसन्न, आया ना, तीव्र संवेगाना, जो साधन में जो अति तीव्र है, यानी भाग रहा है, लापरवाह बिल्कुल नहीं कर रहा है, चाहिए उसमें, तो फिर वही व्यक्ति ही इसको सिद्ध कर सकता है, समाधि को सिद्ध कर, तीव्र संवेगाना जिसे आया है, तो ऐसा चाहिए आपको। अच्छा, निश्चय न, यानी निश्चय पूर्वक शीलयंती, यानी अनुशीलन करता है जो मुमुक्षु, ठीक, ऐसा मुमुक्षुओं का तेषाम अविद्या देह संसार बीजस्य, संसार बीजस्य अविद्या देह, संसार का बीज जो अविद्या है वो अविद्या का विसरणात, लिख रहे हैं कि विनाशात, यानी नाश हो जाने के कारण, नाश हो जाने से। पाठ मिल रहा है ना सभी को? परब्रह्म गमयित्रित्वात्, फिर परब्रह्म जो है भगवान, यानी ब्रह्म जो है प्राप्त हो जाने के कारण प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। गर्भ जन्म जरा मरणाद उपद्रवा, उपद्रवावसादयित्रित्वात्, कि गर्भ जन्म, यानी गर्भ में जाना, जन्म होना, फिर जरा को प्राप्त करना, फिर मरण को प्राप्त करना, ये सारे जो उपद्रव है जीव के लिए, ये उपद्रव है। उपद्रव तो समझ रहे हो ना, उपद्रव है ऐसा, उपद्रव से ये उपद्रवों का अवसाद इत्रित्वात, फिर जो है नाश हो जाता है, ये सारे यानी अवसाद यानी अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, होना हो जाने के कारण इसको जो है उपनिषद कहा, इसे ब्रह्म विद्या को ये उपनिषद कहा। ये मुमुक्षुओं के लिए, पहले जो ये मुमुक्षु वहां से आपको चलना है, जो मुमुक्षु दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय से विरक्त हो गया, और उपनिषद शब्द से जो बतलाने वाली जो विद्या है उसमें निष्ठ और निश्चय पूर्वक जो अनुशीलन किया, ठीक है, ऐसे मुमुक्षुओं का जो संसार का बीज अविद्या है वो नाश हो जाता है, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और ये जो सब शिथिल पड़ जाते हैं, जन्म मरण नाश हो जाता है, ये उपद्रवों का नाश हो जाता है, ऐसे हो जाने के कारण इसको क्या कहा, उपनिषद कहा, ठीक है। उपनिषद क्यों कहा, ये इतनी सारी चर्चा है। अब मैं कल पूछूंगा तो मुझे बताइए आप, उपनिषद इसको क्यों कहा, एक कारण आप बताना है आपको, अब बताएंगे ना। देखो बाइट करके जो है थोड़ा सा भगवान का जैसे चिंतन करते हो, ये भगवान का चिंतन चिंतन जो है ये साक्षात चिंतन है, निर्गुण चिंतन है, ये निर्गुण उपासना है। वेदांत अध्ययन जो है निर्गुण उपासना है, अब जो है कि माला शायद फिराते होंगे, कोई माला भी फिराते होंगे, ठीक है, माला भी जप करना चाहिए, दो तीन माला, चार सात माला, ऐसे माला जप कीजिएगा, वो भी रखिएगा नियम। और जो थोड़ी सी इस चीज को उठा के इसको ही आप चिंतन करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा चिंतन करना ही निर्गुण उपासना है। और इसको आप मत सोचिएगा ये ग्रंथ है क्या पढ़ना है, ये मत सोचिएगा। यदि आपको यदि याद हो जाती है तो आंख बंद करना है, आंख बंद करके हाँ ये पहला पंक्ति में ऐसे बताया, हाँ ये इसको उपनिषद कहा, ऐसे ऐसे करते करते आएगा ना, इतने कंसंट्रेशन होगा, इतने आप तृप्त हो जाएंगे, आप बहुत संतोष होगा, बहुत मेडिटेशन ही है। और सबसे बड़ा उच्च कोटि का मेडिटेशन है। मेडिटेशन नहीं कि आंख बंद करके बस खुल्लम खुलासो छोड़ दो बस कोई चिंता नहीं करना, ये मेडिटेशन है। हम इसको मेडिटेशन नहीं समझते हैं, हम लोग हमारा मेडिटेशन ये है। अच्छा तो अब ये हुआ उपनिषद। आगे समाख्याप्य अन्य कृतात् परम श्रेय इति ब्रह्म विद्य उपनिषद उच्यते। फिर जो है कि अन्य कृतात् परम, जितने भी साधन बताया अन्य साधनों से, अन्य कृतात् अन्य साधनों से, ये जो है परम श्रेय है,